समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, अपनी क्षेत्रीय संवाददाताओं से भी जानेंगे कि उनके पास क्या कुछ खास है, और खेल गतिविधियों और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर। उन खास हस्तियों को भी हम करेंगे याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस। परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं सरफिरोजी, और मेरे साथ है मेरे को होस्ट अभिषेक मुखोपाध्याय।
हेलो सरफिरोजी, हेलो एंड गुड आफ्टरनून, यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा 100.1 एफएम। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज माय को होस्ट सरफिरोजी, एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज डिस्कशन सेगमेंट डेडलाइन इंडिया रिपोर्ट्स कैप्सूल्स बिजनेस ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीज ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट।
केरल के वायनाड भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 165 हो गई है, राहत और बचाव कार्य जोरों पर है।
गबन सेज बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट इज मूविंग ऑन फास्ट ट्रैक।
1983 बैच की आईएएस अधिकारी प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
हमास पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हनिया किल्ड इन इरानियन कैपिटल तेहरान।
मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए देश में अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।
एंड इन पेरिस ओलंपिक्स इंडियन बॉक्सर्स अर्चर्स शटलर्स एंड शूटर्स इन एक्शन टुडे। एंड नाउ सरफिरोजी, इट्स टाइम फॉर अ सेगमेंट डेटलाइन इंडियन व्हिच वी टेक अ लुक एट द डेवलपमेंट्स टेकिंग प्लेस एट द नेशनल और द ग्लोबल लेवल। And today we will talk about World Ranger Day and Lifeguard Appreciation Day. Well, to start off with World Ranger Day, which is observed on the 31st of July, that is today, it holds a significant place to honor and express their gratitude towards the brave individuals who dedicate their lives to safeguarding wildlife. The term ranger refers to any professional involved in the protection and management of national parks and natural areas.
हमारे जवान सीमा पर खड़े हमारी सुरक्षा में दिन रात एक करते हैं, अपनी जान को जोखिम में डालते हैं और कई देश की सुरक्षा में अपने प्राण त्याग भी देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बिल्कुल इन्हीं की तरह पर्यावरण की रक्षा में लगे रहते हैं, इन्हें हम रेंजर कहते हैं। प्रकृति को बचाने और रखरखाव में पार्क रेंजर्स के योगदान का सम्मान करने के लिए इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन ने इस दिन की शुरुआत की थी। विश्व रेंजर दिवस उन सभी रेंजर के काम की सराहना और सम्मान देने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है जो अपनी जान की परवाह किए बिना जंगल के खतरों के बीच उसकी हर चीज को बचाने का काम करते हैं। इस दिन ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले रेंजर्स को श्रद्धांजलि दी जाती है।
The 2024 World Ranger Day theme is 30 by 30, based on the 2022 United Nations Convention on Biological Diversity, COP15, where a global biodiversity framework was agreed upon by world leaders and decision makers. Target 3 outlined the requirement that at least 30% of the planet is effectively conserved and managed by 2030, that is 30 by 30, and this target cannot be achieved without adequately resourced and trained area-based workforce.
रेंजर्स के हिस्से कई सारी जिम्मेदारियां आती हैं, इनमें से अपने इलाके में गश्त लगाना भी उनके काम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। गश्त की लंबाई और प्रकार क्षेत्र पर निर्भर करता है, लेकिन आमतौर पर रेंजर्स हर रोज 10 से 15 किलोमीटर तक गश्त लगाते हैं।
Yes, and rangers are the eyes and the ears of the forest, protecting wildlife and the landscape is the key purpose behind the patrolling. Rangers record sightings of the different species they see, along with signs of an animal such as pug marks, paw prints or scat. They carry cameras to photograph the findings, as well as equipment to record the GPS location and whistle out to patrol. On patrols, rangers are not just looking for signs of wildlife, but signs of illegal activity too. Poaching and the illegal wildlife trade are the most immediate threat to many species. And poaching isn't just limited to animals either. Illegal logging destroys habitat and biodiversity of the region.
रेंजर्स अवैध गतिविधि के संकेतों और स्थान को रिकॉर्ड करते हैं। ये राष्ट्रीय कानून के अनुसार अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, पर अभिषेक ये बहुत दुख की बात है कि कई देशों में शिकारियों से निपटने के लिए रेंजर्स के पास उतनी सुविधाएं नहीं हैं जितनी होनी चाहिए, और इसकी वजह से जंगल की सुरक्षा करते हुए कई बार कई रेंजर्स को अपनी जान गंवानी पड़ती है।
यस, एंड एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रेंजर्स जॉब इज विजिटिंग द लोकल कम्युनिटीज and engaging people with the array of biodiversity nearby. The importance of conservation work is emphasized, as well as how different activities in the forest can impact the village both in the short and the long term, and villagers are acutely aware of the going ons within their own community and can be a good source of information about poachers and illegal hunting. So it is clear that a ranger's work is vast and critical to ensuring a safe future for our natural areas.
और अगर एक इंसान पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अपनी जान तक गंवाने को तैयार है, तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम पर्यावरण की देखभाल करें, प्राकृतिक संसाधनों का शोषण ना करें, अपने आसपास हरियाली रखने की कोशिश करें, क्योंकि पर्यावरण है तो हम हैं।
Yes, absolutely. And Sir Ferozi, today also is the Lifeguard Appreciation Day, which is celebrated on July 31st annually. It is a day for honoring and appreciating those professionals who are saddled with the responsibility of making sure that pool facilities and beaches are safe for visitors and ensuring that they too are guarded while they enjoy a swim. And lifeguards diligently dedicate not only their time but lives to enabling a safe environment for swimmers. They instruct and keep a constant watch on the guests to prevent injury and rescue them from life-threatening accidents. So, Sir Ferozi, let's talk about what do lifeguards do. Well, lifeguards monitor pools, beaches, water parks and other areas that involve swimming to maintain safety at all times. They receive training in water safety and they rescue swimmers who are sick, hurt, sick or in distress. And a lifeguard might also keep a pool, beach or other areas clean and free of debris. So, Sir Ferozi, let's also talk about the major role of a lifeguard. Well, the main duties of a lifeguard are to supervise the activities and people on the beach, to identify hazards and take preventative measures, to endeavor to prevent accidents, to provide water safety and safe sunbathing advice, and to provide a point of contact for people on the beach, and lastly, to provide basic first aid. So we see from a discussion here, Sir Ferozi, that lifeguards work while we play. Yeah. Today, let's thank the lifeguards on duty at a pool, beach or water park and give them the greatest gift. Follow the facility rules, keep an eye on children and weak swimmers, and willingly follow lifeguard instructions. So, on International Lifeguard Appreciation Day, we honor the unsung heroes of the pool and the beach. Thank you, lifeguards, for your unwavering commitment to our safety. So, listeners, if you see any of our lifeguards today, be sure to give a huge shout-out to show your appreciation or share this on your social media to tell the world.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या खास है। 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक में भारत की विविध अनूठी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है। 21 से 31 जुलाई तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व विरासत समिति के 46वें सत्र का आयोजन हो रहा है। एक रिपोर्ट।
इसकी मेजबानी भारत पहली बार कर रहा है। इसी श्रृंखला में समूचे देश में पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारत की प्रमुख धरोहर और ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों पर हेरिटेज वॉक का आयोजन किया जा रहा है। झारखंड में पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की ओर से संस्कृति म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी हजारीबाग में हेरिटेज वॉक और सोहराई तथा कोहबर चित्रकला की कार्यशाला आयोजित की गयी। कार्यशाला में जवाहर नवोदय विद्यालय बोंगा हजारीबाग के युवा पर्यटन क्लब के छात्र सदस्यों तथा शिक्षक समन्वयकों ने भाग लिया। पर्यटन मंत्रालय में सहायक प्रबंधक देविका मंडल ने कार्यशाला के आयोजन के विषय पर प्रकाश डाला।
संस्कृति म्यूजियम में हमने बच्चों को, जो हमारे युवा पर्यटन क्लब जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चे हैं बोंगा हजारीबाग के, उनको हमने ये पूरा संग्रहालय का हेरिटेज वॉक, क्यूरेटेड हेरिटेज वॉक करवाया। साथ ही साथ जो झारखंड के प्रमुख इकलौते जीआई टैग प्रोडक्ट है, जो कि सोहराई कोवर पेंटिंग है, जो सस्टेनेबल है, नेचुरल मिट्टी कलर से ये पेंटिंग्स होती हैं, तो उसी का कार्यशाला हमने बच्चों को करवाया। हमने बच्चों को इस चीज का महत्व बताया कि ये पेंटिंग जो है, ये जो हमारे पुरखों द्वारा होती आ रही है, इस चीज को बरकरार रखने के लिए ये सारी इम्पोर्टेंस हमने बच्चों को बताया।
समाज सेविका अलका इमाम ने कार्यक्रम के अनुभव साझा किए।
उद्देश्य था कि जो झारखंड का जो विशेषकर जो पुरानी संस्कृति है, जो हेरिटेज होम है, जो कल्चर है, और कैसे इनको हम लोग सपोर्ट करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तक ये जानकारी पहुंच पाए। हम लोगों ने दो पार्ट में कंडक्ट किया वर्कशॉप, जहां पर हम लोगों ने स्टूडेंट्स को सुधाई पेंटिंग मिट्टी के रंगों से करने के लिए सिखाया।
आशा है इस कार्यशाला से नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक धरोहर को समझने और उसे संरक्षित रखने की प्रेरणा मिलेगी। आकाशवाणी रांची से परिक्रमा के लिए पूनम केरकेट्टा।
IIT Madras has partnered with IDBI Bank to launch a cyber security lab at Chennai today. The IDBI IITM Secure Systems Lab will develop market-ready IPs in cybersecurity, focusing on productization and commercialization of research, especially for mobile technologies. And the cybersecurity lab will develop and deploy security solutions in crucial sectors such as healthcare, fintech and aerospace, among others. Let's listen in more from our correspondent, S. Joy.
The lab will focus on creating market-ready IPs in cybersecurity, productization and commercialization of research work, especially for mobile technologies. With the rapid growth of internet connectivity and automation, many critical sectors such as banking, finance and insurance, transportation, government power and energy, telecom and strategic and public enterprises depend considerably on information and communication technologies. This has led to an explosion of cyber attacks on these infrastructures by hackers. This lab would focus on cyber security in systems deployed in industries such as banking, automotive, power and telecommunications, among others, and undertake experimental evaluation and assessment exercises. The researchers would also develop test cases for testing, carrying out vulnerability research and health device hardening guidelines. This initiative is a testament to IDBI Bank's commitment to proactively combating cyber threats and ensuring the security of data and information. This is Blessy from Akashvani, Chennai.
लोगों के बीच आपसी सौहार्द, एकता, प्रेम और भाईचारे का प्रतीक बनते हुए एक महीने की कांवड़ यात्रा जारी है। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
श्रावण का महीना चल रहा है, देश भर शिव भक्तों की गूंज सुनाई दे रही है। बोल बम के नारों से परिवेश भक्तिमय दिखाई दे रहा है। कांवड़ियों के भगवा वस्त्र, कांवड़ तथा अपने आराध्य इष्ट देव भोले शंकर को जल अर्पण कर प्रसन्नता करने का जुनून सर्वत्र दिखाई दे रहा है। दार्जिलिंग के पहाड़ी क्षेत्रों से हजारों शिवभक्त कांवड़िये झारखंड के देवघर स्थित विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बैजनाथ धाम जाकर सुल्तानपुर से मां गंगा में डुबकी लगाकर वहां से जल लेकर पैदल यात्रा करते हुए महादेव को जल अर्पित कर रहे हैं। हर रोज सैकड़ों शिवभक्त दार्जिलिंग पहाड़ से छोटी छोटी वाहनों में सवार होकर सज धज कर देवघर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विगत 3-4 वर्षों से पश्चिम बंगाल के तराई डुअर्स के शिव भक्त अब दार्जिलिंग के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर की ओर रुख कर रहे हैं तथा उत्तर बंगाल के विभिन्न जिलों से कांवड़ लेकर दार्जिलिंग आ रहे हैं तथा महाकाल मंदिर जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। देखा जाए तो समतल से पहाड़ आकर जल अर्पित करने का क्रम विगत 2-3 वर्षों से ही आरंभ हुआ है, परंतु इससे नेपाली गोरखा समाज तथा बंगाली समाज के बीच गोरखालैंड आंदोलन के समय जो कटुता अथवा वैमनस्य उत्पन्न हुआ था, उसे पाटने में यह एक अहम कड़ी साबित हो रहा है। स्थानीय नेपाली गोरखा समाज उत्तर बंगाल से आने वाले बंगाली व आदिवासी शिव भक्तों का सुंदर स्वागत कर रहे हैं। उन्हें कोई असुविधा न हो इसका भी ख्याल रख रहे हैं, जिससे आपसी भाईचारा वो प्रेम बढ़ रहा है। यही कारण है कि विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल दार्जिलिंग अब महाकाल बाबा की कृपा से देश का एक प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहा है। परिक्रमा के लिए अशोक चौरसिया, आकाशवाणी कर्शंग।
इंडियन साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड फॉसिल रिमेन्स ऑफ मैग्नेटिक पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया कॉल्ड मैग्नेटो फॉसिल्स इन द रॉक बर्निश लेयर्स ऑफ लद्दाख। And according to a recent study, this important finding can offer crucial insights for future space missions, aimed at detecting habitable environments in space, we have a report.
Conducted by researchers from the Birbal Sahni Institute of Paleosciences, the study suggests that biological processes contribute to the formation of rock varnish, revealing how life can exist in extreme environments. This has important implications for the study of life beyond Earth. The researchers were motivated by the similarities between the rock varnish in Ladakh and that observed on Mars. Rock varnish is a thin, dark, mineral-rich coating that forms on rock surfaces in extremely dry and cold conditions. It is thought to provide essential nutrients to microorganisms. The researchers used advanced equipment to analyze the surface chemistry of rock varnish samples from Ladakh. This analysis uncovered nano chains of magnetofossils. This discovery of biotic signatures in rock varnish can help scientists identify potential biosignatures on Mars and other planetary bodies. Ladakh, known for its harsh climatic conditions such as high ultraviolet radiation, extreme temperature variations, and limited water resources, serves as an ideal correlative for Martian studies. The findings are crucial for planning future space missions, particularly Mars exploration. The insights gained from this study could significantly improve strategies to search life beyond Earth. For Parikrama, Muzaffarwani from Leh, Ladakh.
और अब चलते हैं खेल के मैदान की ओर और जानते हैं वहां की हलचल.
Yes, and the Paris Olympics is happening, and in Paris Olympics, Indian contingent is in action in boxing, archery, badminton, and shooting on day 5 of the mega quadrennial event. And now we will take you live to our correspondent Shaurya Chaudhary in Paris. Shaurya, what are the latest updates from the Olympics?
Yeah, bonjour. Lakshya Sen, he has fought back in the first game. He was trailing and in the badminton courts, and he comfortably won the second game to beat the reigning All England champion Jonathan Christie today in the morning. And he's from Indonesia, a very tough opponent, and Lakshya is now through to the next round, the round of 16. Brilliant performance. He seems to be in great form. Great news from the badminton courts there. PV Sindhu has also gone through, so hopes are really high about the badminton contingent. And even the men's doubles pair is doing really well. Satish Sai Rajan Kiran and Chirag Shetty. So going great guns there in badminton. Meanwhile, in table tennis, Srija Akula, the youngster, she survived a tough match that went down to the wire. And she's also through to the next round. So victory after victory there. And, you know, Balraj Panwar, he is a rower. And India's lone participant here at the Olympics. And he has done commendably. He's playing the classification rounds now. And he has finished his classification now. He's finished the semi-finals. He came sixth there with a time of 7:04.97 seconds. So brilliant performance there. No medals, of course. In shooting, Swapnil Kushale and Aishwarya's Pratap Singh Tomar, very big hopes in the 50-meter rifle C position. They have qualified for the final. And right now, I am at the archery venue at Ovalid in Kari. It's a very hot day, very muggy day. And right now, Deepika Kumari, she has won her first match in the individual round. She has gone through to the round of 32. Now she is in a tough battle with a Dutch opponent. There's also dressage action happening, and Anush Agarwal is participating at the Palais de Versailles, which is a bit out of this town, a very beautiful, historic, iconic venue. Many of these venues are very iconic, picture postcard right, venues, as right. You know. And he has also done pretty well. So, good day overall so far for India.
Right. Thank you, Shaurya. That was Shaurya Chaudhary reporting live from Paris Olympics. And moving on, now we will take you on a tour of India's freedom struggle and record events that happened on this day.
आज की कड़ी में हम महान क्रांतिकारी उधम सिंह को याद कर रहे हैं. उन्हें जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या के लिए आज ही के दिन 31 जुलाई 1940 को फांसी दी गई. उधम सिंह भगत सिंह से बहुत ज्यादा प्रेरित थे. वे उन्हें अपना गुरु और श्रेष्ठ मित्र मानते थे. वे भगत सिंह का फोटो अपने बटुए में रखते थे. उधम सिंह पर भगत सिंह का प्रभाव उस पत्र से जाना जा सकता है जो उन्होंने मार्च 1940 में लिखा था. पत्र में उन्होंने लिखा,
आज 10 बरस हो गए जब मेरे दोस्त भगत सिंह मुझे छोड़ गए थे, और मुझे यकीन है कि मौत के बाद जब मैं उन्हें देखूंगा तो वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे. 23 तारीख को भगत सिंह को फांसी दी गई थी. मुझे लगता है कि मुझे भी वो उसी तारीख को फांसी देंगे.
भगत सिंह की तरह उधम सिंह ने भी मुकदमे में सुनवाई को अपने क्रांतिकारी विचारों को आगे बढ़ाने के मंच के रूप में उपयोग किया.
मुकदमे के दौरान उधम सिंह ने कहा,
हम ब्रिटिश हुकूमत से पीड़ित हैं। वो बेहिचक भारतीय विद्यार्थियों पर गोलीबारी का हुक्म देते हैं। भारत की तुलना में ब्रिटेन में मेरे अंग्रेज दोस्तों की संख्या कहीं ज्यादा है। मैं ब्रिटेन की जनता का विरोधी नहीं हूँ। मुझे इंग्लैंड के कामगारों से हमदर्दी है, लेकिन मैं घृणित ब्रिटिश सरकार का विरोधी हूँ और आप लोग भी वही पीड़ा झेल रहे हैं जो हम लोग झेलते हैं।
उधम सिंह अपने मित्र भगत सिंह की तरह ही अदालत में अपना भाषण समाप्त करते समय क्रांति के समर्थन और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरोध में नारे लगाते रहे।
शहीद आजम उधम सिंह को पेंटो विले जेल में 31 जुलाई 1940 को फांसी दी गई। 1974 में उधम सिंह की अस्थियां भारत लाई गई। इंदिरा गांधी, शंकर दयाल शर्मा और जैल सिंह ने अस्थि कलश प्राप्त किया। 2 अगस्त 1974 को उधम सिंह की अस्थियां 7 भागों में विभाजित की गईं, जिनमें से 5 भाग हरिद्वार, करतारपुर साहिब, रोजा शरीफ, सुनाम और जलियांवाला बाग ले जाए गए। शेष 2 भाग सुनाम में शहीद उधम सिंह कला महाविद्यालय में रखे गए। आकाशवाणी की ओर से महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह को शत शत नमन।
आज हम स्वतंत्रता सेनानी धीरन तीर्थगिरी गौंडर को भी याद कर रहे हैं, जो धीरन चिन्नमलाई के नाम से लोकप्रिय थे। वे 31 जुलाई 1805 को वीरगति को प्राप्त हुए। गौंडर समुदाय के चिन्नमलाई पल्याकर युद्ध के कमांडरों में शामिल थे। 1801-1802 में उन्होंने पोलिगर युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
धीरन चिन्नामलाई का जन्म तमिलनाडु के ईरोड के निकट मेलपलयम में 17 अप्रैल 1756 को हुआ था। उन्होंने अंग्रेजों से युद्ध में टीपू सुल्तान की मदद की और चित्तेश्वरम, माजाहवल्ली और श्री रंगपट्टनम की विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
टीपू की मृत्यु के पश्चात चिन्नामलाई कोंगुनाडु के ओडानिलई में बस गए और वहाँ एक किले का निर्माण कराया। उन्होंने 1801 में कावेरी, 1802 में ओडानिलई और 1804 में आर्चलोर की लड़ाई में अंग्रेजों को हराया।
तोप के हमले से बचने के लिए चिन्नामलाई ने किला छोड़ दिया और पलानी के करुमलई क्षेत्र में रहकर गुरिल्ला युद्ध करने लगे, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया और 31 जुलाई 1805 को संकागिरी किले में फांसी दे दी। महान स्वाधीनता सेनानी को शत शत नमन।
In business news today, the Indian stock market benchmarks, the Sensex and the Nifty, closed higher for the fourth consecutive session, tracking positive global cues after the Bank of Japan raised interest rates. The Sensex closed with a decent gain of 286 points, or 0.35%, at 81,741, while the Nifty settled 94 points, or 0.38%, higher at 24,951.
और अब समय है उन हस्तियों को याद करने का जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा या इस दुनिया में आए। कहां से शुरुआत कर रहे हैं?
Yes, we start off with the great Muhammad Rafi, who passed away on this day in 1980. He was an Indian playback singer. He is considered to have been one of the greatest and the most influential singers of the Indian subcontinent.
सन 1965 में मोहम्मद रफी को पद्मश्री से नवाजा गया। इन्हें एक बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला और 6 बार फिल्म फेयर पुरस्कार में इन्हें नवाजा गया।
Yes, let's go ahead and listen to a medley of his greatest hits.
चाहूंगा मैं तुझे साज सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा, चाहूंगा मैं तुझे साज
आज भारतीय साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की जयंती है। इन्होंने गबन, गोदान, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा आदि जैसी कई कालजयी रचनाएं की। इनकी जयंती पर सुनते हैं आकाशवाणी पर प्रसारित उनकी मशहूर कहानी ईदगाह पर आधारित रेडियो नाटक का ये अंश।
रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा।
Yes, and Alan Octavian Hume passed away on this day 1912, was a British political reformer, ornithologist, civil servant and botanist who worked in British India and founded the party Indian National Congress. He supported the idea of self-governance by Indians. A notable ornithologist, Hume has been called the father of Indian ornithology and by those who found him dogmatic, the pope of Indian ornithology. And also Sir Firozi, James Travis Reeves passed away on this day in 1964. He was an American country and popular music singer and songwriter. With records charting from the 1950s to the 1980s, he became well known as a practitioner of the Nashville sound. He was known as the Gentleman Jim, and his songs continued to chart for years after his death in a plane crash. He is a member of both the Country Music and Texas Country Music Hall of Fame. Let's listen in to a bit of his hit track, Welcome to My World.
Welcome to my world. Won't you come on in? Miracles I guess still happen now and then.
आज अभिनेत्री मुमताज का भी जन्मदिन है। चुलबुली हसमुख और नटखट मुमताज ने कई फिल्मों पर अपना जादू बिखेरा। आपकी कसम, रोटी, अपना देश, खिलौना इनकी यादगार फिल्में हैं। इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिल चुका है। आइए सुनते हैं उनकी फिल्मों के कुछ मशहूर गाने।
आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। गजरा लगा के, गजरा सजा के, गजरा लगा के, गजरा सजा के, बिजुरी गिरा के जइयो ना।
नैन मिला के, चैन चुरा के, बिंदिया उड़ा के जइयो ना।
गजरा लगा के, गजरा सजा के, बिजुरी गिरा के जइयो ना।
Yes, and PC Sarkar Junior और प्रदीप चंद्र सरकार was born on this day in 1946. He is an Indian magician based in Kolkata, West Bengal. He is the second son of Indian magician P.C. Sarkar. He is also the recipient of the Merlin Award in Magic. He holds a doctorate degree in applied psychology from the University of Calcutta and holds the record of being the highest individual foreign exchange earner in entertainment. And also J.K. Rowling was born in this day in 1965, known by her pen name J.K. Rowling. She is a British actor and philanthropist. She is the author of Harry Potter, a 7-volume fantasy series published from 1997 to 2007. The series has sold over 600 million copies, been translated into 84 languages, and spawned a global media franchise, including films and video games. The Casual Vacancy in 2012 was the first novel for adults. The Harry Potter novels follow a boy called Harry Potter as he attends Hogwarts, a school for wizards, and battles Lord Voldemort, and death and divide between good and evil are the central themes of the series.
आज भारत के प्रसिद्ध विद्वान, भाषा वैज्ञानिक और गणितज्ञ दामोदर धर्मानंद कौसाम्बी की भी जयंती है। और अब समय हो चला है कि आपसे अनुमति ली जाए। इजाजत दीजिए, सर फिरोजी और अभिषेक मुखोपाध्याय को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड।
यस एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बाय एंड नमस्कार।